अरुणिमा पार्टी हॉल में एंटर करती ही है कि उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे सामने ही साकेत नजर आया था, जो अपने हाथों में वाइन का गिलास लेकर अरुणिमा से मिलते हुए कहता है, अरुणिमा तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब अंदर आओ, सारे बिजनेस पार्टनर अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए साकेत को देखा। साकेत अरुणिमा के पिता की कंपनी का एचआर था। जब अरुणिमा के पिता की कंपनी बिल्कुल कंगाल होने की कगार पर थी, तभी साकेत ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। इसीलिए अरुणिमा के लिए साकेत एक भरोसेमंद इंसान था, और इसीलिए जब उसने अपना बिजनेस शुरू किया तो सबसे पहले साकेत को ही उसमें शामिल किया था। अरुणिमा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यहाँ पर अल्कोहल की स्मेल आ रही है, तुम तो जानते हो ना, मुझे अल्कोहल की स्मेल से उल्टी आ जाती है, इसीलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं। साकेत ने जल्दी से अपना वाइन का ग्लास साइड टेबल पर रखते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, लेकिन तुम कुछ तो पियोगी ना? ऑरेंज जूस, अरुणिमा ने कहा। तो साकेत ने वेटर को बुलाया जिसके हाथों में ऑरेंज जूस था। अरुणिमा ने ऑरेंज जूस लिया और बाकी सबको देखने लगी। सच में आज अरुणिमा बहुत खुश थी। उसकी कंपनी इतने बड़े बिजनेस एम्पायर के साथ कोलैब कर रही थी, और वो उसकी कंपनी के लिए बहुत अच्छा डिसीजन था। अरुणिमा ने इधर इधर देखते हुए कहा, निशांत कहाँ है? जिसकी घर में पार्टी है वही पार्टी से गायब है, उसी ने तो ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है, और अब वही मुझे नजर नहीं आ रहा। साकेत मुस्कुराते हुए बोला, और कहाँ होगा, वहीं जहाँ कोई आता जाता ही नहीं। अरुणिमा उसे घूर कर देखती है तो साकेत हंसते हुए ऊपर की तरफ इशारा करता है, और उसने मानो सर हिलाया। वो लोगों को साइड करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है और फिर ऊपर चली जाती है। साकेत भी वहां से बिजनेस पार्टनर की तरफ चला जाता है जिनके साथ उनकी बिजनेस डील होने वाली थी। अरुणिमा वहां से सीधे थर्ड फ्लोर पर पहुंचती है और एक बड़े से दरवाजे के सामने रुक जाती है। उसके हाथ में ऑरेंज जूस का गिलास अभी भी था और चेहरे पर एक घबराहट थी। उसने गहरी सांस छोड़ी और कमरे का हैंडल खोलकर वो अंदर कदम रखती है। अंदर पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन अरुणिमा को पता था कि उसे कहाँ जाना है। कमरे के अंदर जाते ही अरुणिमा सीधे बालकनी की तरफ चली जाती है, एक लंबी चौड़ी बालकनी जिसमें स्विमिंग पूल अटैच था। अरुणिमा का अंदाज़ा बिल्कुल सही था। स्विमिंग पूल के पास निशान था, जो अपने दोनों पैर स्विमिंग पूल के अंदर डाले बैठे ऊपर तारों को देख रहा था। अरुणिमा ने पीछे से उसे देखते हुए कहा, नीचे पार्टी चल रही है, सारे मेहमान आ चुके हैं, और तुम इस बार यहाँ बैठे हो? निशान ने पीछे पलटकर अरुणिमा को देखा और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसके बाद निशान ने अपना एक हाथ उठाया और अपने पास की जगह को थपथपाते हुए कहा, जॉइन अस। अरुणिमा ने भी मुस्कुराते हुए अपना सर ना में हिलाया। वो अपनी ऊंची हील की सैंडल को एक तरफ रखती है और ठंडे पैरों से चलते हुए सीधे स्विमिंग पूल के पास आती है। नीचे झुककर उसने अपना ऑरेंज जूस का ग्लास साइड में रखा और अपने गाउन को हल्का सा घुटनों की तरफ उठाते हुए वो निशांत के बगल में बैठ जाती है। उसने भी अपने पैर पानी में डाल दिए और निशांत की तरह ऊपर टिमटिमाते तारों को देखने लगी। वो दोनों ही इस वक्त तारे देख रहे थे और दोनों के ही चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ देर बाद अरुणिमा उसे देखते हुए कहती है, तुम नीचे पार्टी में क्यों नहीं हो? जवाब तुम्हें पता है अरु, निशांत ने कहा। तो अरुणिमा मुस्कुराते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या, मैं पार्टी में देर से पहुंची तो इसीलिए तुम भी पार्टी में नहीं गए? निशांत, मेहमानों को तुमने ही बुलाया है, ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि जिसने पार्टी में इन्वाइट किया है वही उससे गायब है। निशांत के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अरुणिमा को देखा और बोला, मैं बस थोड़ी देर सुकून से अकेले में बैठना चाहता था। तुम्हें मालूम है ना, मुझे शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे पता था कि अगर मैं पार्टी में नजर नहीं आऊंगा तो तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आओगी। कितनी शांति है ना यहाँ, कितना सुकून है, अरुणिमा ने अपना सर हिलाते हुए बोला। हाँ सुकून तो है, लेकिन हम दोनों इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि नीचे जो मेहमान है वो हमारे लिए ही आए हैं, वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निशांत, हम उन्हें इस तरीके से नाराज नहीं कर सकते, इसीलिए उठो और चलो। अरुणिमा पानी से अपने पैर बाहर निकालती है और पास में पड़े एक टॉवल से उन्हें पोंछती है। वो अपना ऑरेंज जूस का ग्लास वापस उठाती है और अपने हील के पास आती है। निशांत मुस्कुराते हुए अभी भी बैठा हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, लगता है इस साल त्योहारों का मौसम बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत कुछ अच्छे के लिए होने वाला है। अरुणिमा हील पहनते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, हमने त्योहारों के लिए बहुत से नए आइडिया पर काम किया है और हम नए लोगों को मौका देंगे कि वो हमारी कंपनी में अपने यूनिक आइडिया लेकर आएं। मुझे लगता है इस साल का फेस्टिवल सीजन हमारी कंपनी के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आएगा। निशांत ने अपना चेहरा घुमाकर पीछे अरुणिमा को देखा और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने अरुणिमा से कहा, क्या तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? अरुणिमा दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हें जो भी पूछना है नीचे आकर पूछो। क्या तुम अभी भी आस्तिक के बारे में सोचती हो? अरुणिमा के कदम रुक जाते हैं और उसका हाथ एकदम से थम जाता है। उसके हाथों में जो ऑरेंज जूस था उसमें हल्की हल्की वाइब्रेशन होने लगी थी। अरुणिमा के सामने अचानक वो सारे मंजर आ जाते हैं जब वो और आस्तिक साथ थे। अरुणिमा अपनी भावनाओं को खुद से छुपाने में असमर्थ थी। वो झूठ नहीं बोलेगी कि इन 5 सालों में उसने कभी आस्तिक को याद नहीं किया था या फिर कभी उसके लिए तड़पी नहीं थी। अरुणिमा जानती थी कि वो अभी भी दिल दिमाग और आत्मा से आस्तिक से प्यार करती है और वो उसके प्यार के लिए तरस रही है। लेकिन आस्तिक उसकी जिंदगी और उसकी दुनिया से ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। आखिरी बात जो अरुणिमा ने आस्तिक के बारे में सुनी थी वो ये थी कि वो यहाँ से कहीं दूर चला गया है। अब वो कहाँ गया है इस बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि आस्तिक के किसी भी परिवार ने अरुणिमा के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखा और ना ही किसी ने आस्तिक के बारे में कुछ बताया। अरुणिमा ने उन सबको सोशल मीडिया पर ढूंढने की कोशिश की लेकिन शायद वो अरुणिमा से जुड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए अरुणिमा किसी को ढूंढ ही नहीं पाई। शुरुआत में ये सब अरुणिमा के लिए बहुत मुश्किल था। उसे आस्तिक की आदत हो गई थी, उसकी कमी अरुणिमा को बहुत महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अपने दिल और दिमाग को बहुत मजबूत करके आगे बढ़ने का फैसला किया था। अब अरुणिमा को हैरानी हो रही थी। 1 साल हो गए आस्तिक के बारे में किसी को कोई खबर नहीं, यहां तक कि ना तो न्यूज में और ना ही सोशल मीडिया पर उसके बारे में कोई अफवाह आई है। आस्तिक उनमें से नहीं था जो अचानक गायब हो जाए। वो तो मीडिया अटेंशन के लिए पागल था। उसकी हर चीज मीडिया में आती थी। उसकी कंपनी में कितने शेयर्स हैं, उसकी कंपनी कितनी ऊंचाइयों पर जा रही है, कितने एम्प्लॉयज ज्वाइन हुए, कितनों ने अपनी नौकरियां छोड़ी, ये सारी चीजें उसकी कंपनी के लिए मीडिया वाले टॉप टीआरपी रेट में चलाते थे। लेकिन पिछले 1 सालों से उसकी कंपनी के बारे में ना तो कोई जानकारी मिली, ना कोई ऑफर, यहां तक कि कोई नेगेटिव बातें भी सुनने को नहीं मिली। आस्तिक ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी वजूद में ही नहीं था। आखिरी बात जो अरुणिमा को आस्तिक की याद थी वो था उसके नोट्स में लिखा हुआ वो आखिरी शब्द, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा।